hanya semata-mata belas. Mulai tujuannya, orangnya tarik mobil. Saman dan Farman. दोनों में रहने और चलने की अपने को हिम्मतवान समझते हुए समान में भी रहे और फरमान पर भी चले। इन दोनों बातों में अपने को ठीक समझते हुए अगर समान में कुछ नहीं रहते हुए तो फरमान के चलने में भी कोई न कोई कमी पड़ जाती है। इसलिए दोनों रूपों में अपने आप को यथार्थ रूप से स्थित करते हुए अपनी और स्थिति बनाने वर्तमान पुरुषोत्तम संगम का आप ब्राह्मणों का जो ऊंचे पे ऊंचा समान है उसमें स्थित रहे। समान में स्थित होने से भिन्न भिन्न प्रकार के दो अभिमान स्वतः और सहज ही समाप्त हो जाते हैं। कहाँ कहाँ करते बापने के साथ में चलते चलते बहुत छोटे से एक शब्द की गलती कर देते जिससे से सारी गलतियां हो जाती और सब प्रकार की गलतियों का बीज एक शब्द की कमजोरी। वो कौन सा शब्द है? समान से क्या शब्द निकाल देते मान में शान में आ जाते। जब अपने मान शान में आ जाते हैं समान को जाते हैं मान में आने से फरमान भूल जाते। समान है समान में स्थित हो कदम तो मान में आने से फरमान खत्म हो जाता इसलिए शब्द की गलती होने के अंदर गलती हो जाती। फिर मान में आकर के बोलना चलना करना सब बदल जाता है तो एक शब्द खत्म होने से जो वास्तविक किसके हैं उसके कट हो जाते। कौन सा शब्द? ऐसी स्थिति में जाने के कारण जो पुरुषार्थ या सर्विस करते हैं उसकी रिजल्ट भी निकलती है जो मेहनत ज्यादा है और प्रत्यक्ष फल कम निकलता है। सफलता मूर्त जो बनना चाहिए बोले वो नहीं बन पाते और सफलता मूर्त न बनने के कारण व सफलता पुरुष न होने के कारण फिर इसके रिजल्ट क्या होती है? मेहनत बहुत करते और मेहनत करते करते चलते चलते थक जाते हैं। लाभ कम होते होते आलस्य आ जाता है और जहाँ आलस्य आए वहाँ उनके अनुसाथी भी कौड़ी आ जाती है। आलस्य अपने सभी साथियों से तंग आता है अकेला नहीं आता जैसे बाप भी अकेला नहीं आता है उसके साथ ही था उनके बच्चे। ब्रह्मा विष्णु शंकर और त्रिमूर्ति के बगैर बात भी न आता है न प्रत्यक्ष होता है। वैसे ये जो विकार हैं वो भी अकेले नहीं आते साथियों के साथ आते। इसलिए फिर विकारों की प्रवेशता होने से कई फरमान उल्लंघन करने के कारण स्थिति क्या हो जाती है? कोई न कोई कारण रह जाता न कौन संतुष्ट रहते न दूसरों को संतुष्ट कर पाते। इस एक शब्द कट करने के कारण स्वयं भी असंतुष्ट रहते और दूसरों को भी असंतुष्ट करते। इसलिए कभी भी अपनी उन्नति का जो प्रयत्न करते हैं या सर्विस के कोई भी प्लान बनाकर प्रैक्टिस में लाते हो तो प्लान बनाने और प्रैक्टिकल लाने का समय भी नहीं पहले अपने समान की स्थिति में स्थित हो फिर कोई भी प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में आओ स्थिति को छोड़कर प्लान ही बनाओ। अगर स्थिति को छोड़कर के प्लान बनाते हो तो क्या होगा, तुम उसमें कोई शक्ति नहीं रहती। बिगर शक्ति उस प्लान का प्रैक्टिकल में क्या प्रभाव रहेगा। पहले तो खूब करते हो, विस्तार बहुत कर लेते हो, लेकिन अपनी बीजरी अवस्था को छोड़ देते हो। विस्तार में जाने से तार निकाल देते हो, तो अब तार को नहीं निकाल, विस्तार को समाने अर्थात तार स्वरूप बनने में विघ्न आता है। क्वांटिटी में चले जाते हैं, लेकिन अपनी क्वालिटी में सर्विस की क्वालिटी को नहीं देखते। तो सर्विस की क्वालिटी को देखो, क्वांटिटी में जाने से क्वालिटी नहीं निकलती है। पर्सनल व्यक्तिगत सर्विस से ज्यादा फायदा है या हुजूर की सेवा करने में ज्यादा फायदा है, क्या फायदा होगा? व्यक्तिगत सर्विस करने से क्वालिटी की आप नहीं देंगे, लेकिन इसके लिए अपनी स्थिति में भी संकल्पों की क्वांटिटी है, इसलिए सर्विस के रिजल्ट में भी क्वांटिटी मिल जाती है, क्वालिटी नहीं। सार धार रूपी विस्तार में एक दिव्य पावरफुल होता है ना, ऐसे ही क्वांटिटी के बीच एक भी क्वालिटी वाला है तो विस्तार में दिव्य रूप के समान। क्वालिटी की सर्विस करते हो, विस्तार में जाने से व दूसरों का कल्याण करते करते अपने कल्याण को तो मिल जाते हो। जब दूसरों के प्रति जाति अटेंशन देते हो तो अपने अंदर जो टेंशन चलता है उसको नहीं देते। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, मुझे जितने अनेक प्रकार के टेंशन हों उनको खलास कर सकते। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस पर, अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस खत्म हो जाएगी। अपनी सर्विस को छोड़ दूसरों की सर्विस में लग जाने से समय और संकल्प ज्यादा व्यर्थ करते हो। इस कारण जो हाथ जमा होना चाहिए वो नहीं कर पाते, जमा न होने के कारण वो नशा वो खुशी नहीं रहती। अभी अभी कमाया, अभी अभी खाया तो अल्पकाल का हो जाता है, जो जमा रहता है वो सदा साथ रहता है। तो आप जमा करना सीखो, क्योंकि जन्म के लिए नहीं लेकिन इच्छुक जन्मों के लिए जमा करना है। अगर अभी अभी खाया कमाया तो भविष्य क्या बनेगा, अभी अभी कमाया और अभी अभी डांटा। खाने के बाद समाना भी चाहिए, फिर बांटना चाहिए। कमाया और सीधा बांट दिया तो अपने में शक्ति नहीं रहती। समाने का मतलब जैसे खाना खाया जाता है, खाना एक बात और दबा दबा के खाना दूसरी बात, और खाए हुए अन्न को हजम करना ये अलग बात। तो हजम करना क्या है, समाना क्या है? मन चिंतन करते हुए उसको कहाँ तक समा लेना, दान करने से खुशी रहती लेकिन उसको स्वयं में समाने की शक्ति नहीं रहती। खुशी के साथ शक्ति भी चाहिए, शक्ति न होने के कारण निर्विघ्न नहीं रह सकते, विघ्न को पार नहीं कर सकते, छोटे छोटे विघ्न लगन को डिस्टर्ब कर देते। इसलिए समाने की शक्ति धारण करनी चाहिए। जैसे खुशी की झलक सूरत में दिखाई देती है वैसे शक्ति की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। सरल चित्त बहुत हो, लेकिन जितना सरल चित्त हो उतना ही सहनशील हो, तो सहनशीलता की सरलता है। सरलता के साथ कमाने की, सहन करने की शक्ति भी चाहिए। अगर कमाने और सहन करने की शक्ति नहीं तो सरलता बहुत गोला रूप धारण कर लेती, और कहां कहां भोलापन से बहुत भारी नुकसान कर देता। तो ऐसा सरल चित्त भी नहीं बनना है, बाप को भी भोला ना कहते हैं ना, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना न कर सके। भोलानाथ के साथ साथ आलमाइटी अथॉरिटी भी तो है ना, सिर्फ भोलानाथ नहीं है, शक्ति स्वरूप तो भूल सिर्फ भोले पर जाते हैं तो माया गोला लग जाता है। वर्तमान समय भोलेपन के कारण माया का गोला ज्यादा लग रहा है। ऐसा शक्ति स्वरूप बनना है जो माया सामना करने से पहले ही नमस्कार कर ले, सामना कर ही न पावे। बहुत सावधान खबरदार हो क्या रहना है, अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो, अपने आप को देखो कि कोई भी वायुमंडल वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता है। कैसा भी वायुमंडल हो लेकिन स्वयं से शक्तिशाली व्यक्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। अगर वायुमंडल का व्यक्ति के ऊपर असर आ जाता है तो यही भोलापन। ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ठीक हूं लेकिन वायुमंडल का चेक आ गया, नहीं। कैसा भी वायुमंडल विकारी हो लेकिन स्वयं से व्यक्ति निर्विकारी होनी चाहिए। जब कहते हैं हम पति तो पावनीय है, पतितों को पावन बनाने वाली है, आत्माओं को पावन बना सकते हो तो क्या वायुमंडल को पति से पावन नहीं बना सकते? पावन बनाने वाले वायुमंडल की बची भी तो नहीं होते हैं, लेकिन वायुमंडल व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डाल देते हैं, यही कमजोरी। अपनी चैन की वायर व्यक्ति से जो भी यह पवित्र का कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना, उसको मिटाने वाले हो ना तो वसी भी पहने वाले। कोई पति को वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए, अगर वर्णन भी किया तो जैसे कहावत है ना, पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। अगर कोई भी कमजोर व पति तो वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो वो भी पाप है, क्योंकि वो पाप करते समय उस बात को भूल जाते हो। जहां बात भूल जाता है वहां पाप जरूर होता है। बात याद होगा तो पाप नहीं हो सकता, इसलिए वर्णन भी नहीं करना चाहिए। जबकि बाप का प्रमाण है मुझसे सिवाय ज्ञान रत्नों की और कोई एक शब्द भी व्यक्ति नहीं निकालना है। वायुमंडल का वर्णन करना मेरी व्यर्थ हुआ ना, जहां व्यर्थ है वहां समर्थ की स्मृति में, समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोल बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलना, ज्ञान रत्न ही बोलेंगे। तो व्यक्ति को बोल को भी चेक करो और फिर कर्म करो। कर्म में आने से पहले संभल कर फिर कर्म करो, कर्म करने के बाद नहीं सोचो। कई ऐसे भी समझते हैं कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, कितनी भी कोई माफी ले ले, लेकिन जो कोई पाप कर्म हुआ व व्यर्थ कर्म हुआ तो उसका निशान नहीं मिलता है। निशान तो पड़ ही जाता है, संस्कार तो पक्का होता ही रहता है, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया और माफी ले ली, बार बार किया और बार बार माफी ले ली, उसको ऋण की रकम को भी नहीं अपनाना। अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प न आए। इसको कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति स्मृति व संकल्प में भी है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं है, उसको पहला नहीं मानते हैं। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो, किसी के साथ साथ पत्नियों को भी साथ रखना है। विशेषताओं के साथ अगर कमजोरी भी होती है तो एक कमजोरी अनेक प्रकार की विशेषताओं को समाप्त कर देती है। तो अपनी विशेषताओं को प्रकट करने के लिए कमजोरी को समाप्त कर देती, समझा? सर्विस के बीच में अगर डिसर्विस हो जाती है तो डिसर्विस प्रकट हो जाती है और सर्विस गुप्त हो जाती। कितना भी अमृत हो लेकिन जिसके एक बूंद पड़ने से भी सारा अमृत गुप्त बन जाता है। जितनी भी सर्विस करो लेकिन कोई एक छोटी सी गलती गुप्त सर्विस का कारण बन जाती है, सर्विस को समाप्त कर देती। इसलिए बहुत अटेंशन रखो अपने ऊपर और अपनी सर्विस के ऊपर पहले अटेंशन दो। पहले करना है फिर करना है। कहना तो सहज होता है लेकिन करने में मेहनत है, मेहनत का फल अच्छा होता है, सिर्फ कहने का फल अच्छा नहीं होता। तो पहले करो फिर कहो। तो देखना कैसी क्वालिटी वाली सभी सोची है, अपनी क्वालिटी को पहले देखो, समझा? वृत्ति और वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। आप ब्राह्मणों का जन्म ही है बनने और बनाने के लिए, सिर्फ बनने के लिए नहीं, पढ़ना है पढ़ाने के लिए, विश्व कल्याणकारी होना है। जैसे बाप कल्याणकारी है साथ में आप भी मददगार हो। इसलिए ये भी नहीं सोचना चाहिए मेरी वृत्ति तो ठीक है, ये तो वायुमंडल ने कर दिया। अगर अपनी वृत्ति ठीक है तो उसका वायुमंडल पर अगर असर नहीं होता है तो गोया पावरफुल वृत्ति है ही। पावरफुल चीज का प्रभाव आसपास जरूर पड़ता है, विकसित नहीं सकता। तो अपनी वृत्ति को भी परखने के लिए ये चेक करो कि वृत्ति का वायुमंडल पर असर क्या है। वायुमंडल अगर और दिखाई देता है तो समझना चाहिए अपनी वृत्ति में भी कमजोरी है, उस कमजोरी को बिताना चाहिए। आजकल चारों ओर की सर्विस में विशेष क्या दिखाई देता है? साज बजाने में बड़े होशियार हो गए हैं लेकिन साज में जाने से रात से खिसक जाते हैं। बनना है राजयुक्त लेकिन बन गए हैं ताज और राज, दोनों ही साथ साथ समान होना चाहिए। अगर एक बात ज्यादा फोर्टी है और दूसरी बात गुप्त है तो रिजल्ट भी गुप्त हो जाती। ताज बजाने में तो बहुत होशियार हो गए लेकिन राजनीति भी बनना है। तो अब राजयुक्त बने, योगयुक्त बने और युक्तयुक्त बने। अच्छा, ऐसे राजयुक्त योगयुक्त युक्तयुक्त चलने वाले बच्चों को नमस्ते। यूनाइटेड किंगडम निवासी भाई बहनों से बाप दादा की मुलाकात। बीस दो सतासी के विद्वान वीडियो के अमूल्य रतन है। जैसे वो स्थूल रतन कोहनूर का गाया हुआ है, वो कहीं कोहनूर है और आप कोसों में कोई हो, इसका नाम क्या है? बहुत प्रसिद्ध हीरा है, दो है मुझे निर्मल रोकी वो तो रानी के साथ का हीरा है और आप परमात्मा के साथ भी हो दुशक्ति के हीरे भी हो वही स्थान है ना इस स्थान के अनुसार ही रतन की वैल्यू होती है तो सबसे श्रेष्ठ स्थान परमात्मा स्थान इससे श्रेष्ठ और कोई स्थान हो ही नहीं सकता तो इसे स्मृति में रहो कि हम बाप के बन गए ये श्रेष्ठ किसी की सदा खुशी में आगे बढ़ाती रहेगी तो सभी हर कदम में आगे बढ़ने वाले हो या रुक करके आगे बढ़ने वाले हो जो डबल लाइफ रहते हैं उनको रोकने की आवश्यकता नहीं है जो भारी होते हैं उनको बीच बीच में रोकना पड़ता है तो आप हर कदम में आगे बढ़ने वाले डबल लाइफ हो ना यू के सभी सेवा के स्थानों का बीज यूनाइटेड किंगडम संगठित राज्य तो बीज शक्तिशाली है तो व्यक्ति भी विस्तार को पा रहा है और फल भी दे रहा है रिजल्ट देख करके खुशी होती है ना फाउंडेशन वाले तकते हैं तो व्यक्ति भी तकता है सभी विदेश के सेवा स्थानों का बीज कौन सा बताया यूके यूनाइटेड किंगडम उसमें भी मुख्य शहर कौन सा है लंदन सबसे जाति ज्ञान का लंदन करने वाला भी कौन हुआ पहला शहर है यहाँ से बेसिक नॉलेज भी विदेशों में प्रसारित हुई बीज वहीं से पढ़ना शुरू हुआ और एडवांस नॉलेज भी काफी बीज कहाँ से पढ़ना शुरू होता है विदेशों लंदन वो हद का लंदन और वो बेहद का लंदन और सभी को छाया देकर के सेवा कर रहे सभी सहारा लेकर के खुश हो रहे हैं बा सुख मिल गया शांति मिल गई तो ये वृक्ष की छाया का फल है इतनी सेवा कर रहे हो ना यू के वाले बाप दादा भी फाउंडेशन और वृक्ष दोनों को देख करके खुश होते कभी सेवा करते करते थकते नहीं जाते हैं ये तो नहीं सोचते कि इतना बड़ा कार्य हमारे ऊपर रख दिया जितना बड़ा कार्य करते हो तो बड़ा कार्य करने में जिम्मेदारी का ताज भी बड़ा और बाप दादा के स्नेह की मदद भी इतनी बड़ी मिलती तो जहाँ बाप का स्नेह है वहाँ बड़ी बात भी कामन लगती जब अकेला समझते हो सोचते हम करने वाले हैं तो बड़ा लगता है और बाप का साथ है सहयोग है तो छोटा लगेगा बोझ बाप ने उठा लिया तो बाकी सहल हो गया ना तो ये भी एक ड्रामा में भाग्य है जो बेहद की सेवा के निमित्त बनी है कौन यूनाइटेड किंगडम आज करके लंदन हर कदम में सेवा की दुआएं बाप द्वारा अनेकों द्वारा प्राप्त करके उच्च कला में जा रहे हैं माँ दादा भी बच्चों की विशेषताओं को देख करके खुश होते हैं अच्छा
रिटायर चला है मुझे कोई सहारा देने वाले बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं ज्ञान किसका? क्या शास्त्रों का ज्ञान? नहीं, बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य नाते लेते हैं। हमें तो यहाँ परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। क्या अंतर हुआ दुनिया वालों में हमारे में अंतर क्या हुआ? दुनिया वाले भी ज्ञान लेते हैं, दुनियावी ब्राह्मण भी ज्ञान लेते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान लेने में और उनके ज्ञान लेने में ये विशेष अंतर है। वो मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं और हम डायरेक्ट परम पिता परमात्मा से ज्ञान लेते हैं। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे क्या कि हमें परमात्मा बाप पढ़ाते। वो सन्यासी कोई शास्त्र थोड़े वो ज्ञान थोड़े सुनाते हैं। कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य बैठा होगा, उनको शास्त्री जी पंडित जी व महात्मा जी कहेंगे। नाम का ताल्लुक मनुष्य के साथ होता है। यहाँ बच्चे जानते हैं हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देता, परंतु मनुष्य द्वारा निराकार परमपिता परमात्मा हमको ज्ञान देते हैं हमारी बुद्धि में। और उन शास्त्र सुनने वालों की बुद्धि में क्या अंतर होता है? वो समझते हैं हमको कोई मनुष्य गुरु सुनाता है, और हम क्या समझते हैं? हमको सुनाने वाला निराकार परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु है, बल मनुष्य तन द्वारा सुनाता है। ये बात कोई भी सत्संग में कोई भी हाल में भाषण करने वाले जो भी हैं उनकी बुद्धि में ये बात नहीं हो सकती। हमको जो भी ज्ञान दे रहा है वो कोई मनुष्य अथवा कोई देवता नहीं समझाते, बल इस समय देवी देवता धर्म नहीं है। फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म बतनवासी जो है उनका नाम तो गाया जाता है। लक्ष्मी नारायण आदि ये सब दैवी गुण वाले मनुष्य, इस समय सब आत्म गुण वाले मनुष्य। कोई भी मनुष्य नहीं समझते कि हम आत्मा है, फलाने द्वारा हमको परमात्मा ज्ञान दे रहा है। वो तो समझते फलाने महात्मा फलाना शास्त्री जी हमको कथा सुना रहा है, वेद शास्त्र आदि सुना रहा है, गीता सुना रही हूँ। बात कहते हैं मैं तो तुमको ऐसी शास्त्रों की बातें नहीं सुनाता हूँ, तुम तो अपने को आत्मनिश्चय करते हो और फिर कहते हो पति का पावन आओ, सर्व का दुखहरता सुख करता वो हो, सर्व का शांति दाता मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, वो तो कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ति करते हैं, कोई भजन गाते हैं कथा करते हैं, इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वालों को ये मालूम नहीं रहता है कि भक्ति मार्ग क्या होता है। यहाँ सब जगह भक्ति ही भक्ति, ज्ञान है दिन और भक्ति है अज्ञान अंधेरी रात। जब ज्ञान होता है तो भक्ति नहीं होती, और जब भक्ति है तो ज्ञान है। द्वापर कलयुग है भक्ति और सतयुग त्रेता है ज्ञान का फल। वो ज्ञान का सागर ही फल देते हैं। भगवान क्या फल देगा? फल माना वर्षा। भगवान वर्षा देगा मुक्ति जीवन मुक्ति का, साथ में मुक्ति धाम ले जाएगा। इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की जगह नहीं, अनाज नहीं है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। रावण सबको पति तो बनाते हैं, फिर पति को रावण आकर के पावन बनाते हैं, क्या आकर के पावन बनाते हैं? ऐसे नहीं आते हैं और आकर के पढ़ाई पढ़ा के चले जाते हैं फिर पावन अपने आप बनते रहते। पावन बनाने वाला और पति तो बनाने वाला दोनों ही अलग अलग है। अब तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पति का बनाने वाला कौन है और पति की दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है। कहते हैं पति का पावन आओ, एक को ही बुलाते हैं, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने के लिए बुलाते हैं। ऐसे तो नहीं बुलाते कि आकर के ज्ञान सुनाओ। सर्व का पालन करता एक ही है, पति में कोई विकार ही नहीं हो सकता। पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं, युक्त कति या कैसा कार्य कार्य विपरीत, जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य करना, क्या नहीं करना चाहिए सब जानते हैं, पाप नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए पुण्य करना चाहिए। पाप की परिभाषा क्या है, पाप किसको कहा जाता है? हाँ, जिस काम से दूसरे को दुख हो उसको कहा जाता है पाप। तो कोई भी कर्मेंद्रिय से अगर ऐसा कोई पाप किया जिससे दूसरे को सदाकाल का दुख पैदा हो जाए, अल्पकाल का दुख हो और सदाकाल का सुख हो जाए, तो विकार नहीं कहा जाता। अब तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पतित बनाने वाला और पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है। पतित में तो कोई विकारी नहीं हो सकता, पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं, सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। कहा जाता है पवित्र आत्मा, पांच विकारों का सन्यास किया हुआ है। नंबर वन है काम विकार, क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत होता है, स्त्री को छोड़ते हैं समझते हैं उनके संग में मनुष्य निर्विकारी नहीं रह सकता, स्त्री ली जाती है विकार के लिए, शादी का मतलब ही यही लगाया जाता है। पति में ये कायदा नहीं होता है, बाप समझाते हैं बच्चे, वहाँ पति तो कोई होता ही नहीं है, देवताओं की महिमा संपूर्ण निर्विकारी, रावण शादी शुरू होता है द्वापर युग, बाप खुद कहते हैं काम जीतो, तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो तो तुम पतित नहीं बनेंगे। मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। और दूसरी बात, एक बाप के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ तुम आपस में भाई बन गए, ये बात जब तक अच्छी तरह किसी बुद्धि में नहीं बैठेगी। उनकी बात जो हम आपस में प्रैक्टिकल बाप के सच्चे सच्चे पक्के पक्के भाई बहन हैं, तो विकार से नहीं छू सकते। जब तक ब्रह्मा की संतान न बने तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है। ब्रह्मा की संतान तो बोल बन गए, बने कि नहीं बने, तो भाई बहन बन गए। तो अगर ब्रह्मा की संतान नहीं है प्रैक्टिकल में तो मदद नहीं होगी। अच्छा ब्रह्मा की बात छोड़ो, तुम कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं, साकार में कहते हो तो बच्चे हैं भगवान के बच्चे, तो साक्षी क्या बचेगी है, साक्षी भगवान का बच्चा नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिकल में हैं, हमको प्रैक्टिकल में साकार में भगवान मिला हुआ है। वो तो सिर्फ कहते हैं हम भगवान के बच्चे हैं, लेकिन भगवान को तो जानते भी नहीं, तो तुम साकार में कहते हो एक हिसाब से भाई बहन हो गए, फिर विकार में कैसे जा सकते, ये तो सब कहेंगे हम ईश्वर की संतान है, वो तो पांच करोड़ भी कह देंगे। और बाप कहते हैं बच्चे मैं आ गया हूँ, अब जो मेरे आकर बनते हैं क्या, मेरे बनने के लिए आना जरूरी है क्या, अब जो मेरे आकर के बनते हैं वो आपस में भाई बहन खेल आते नहीं है, तुम्हें साकार में आया हुआ हूँ ना, तो आकर के बच्चा बने। दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो कहीं से आते है ना, आत्मा माँ बाप के पास आकर जन्म लेती है ना, ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती है, तो फिर साकार में नहीं जा सकते। बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, एक जन्म के लिए तो इस विकार का त्याग करो। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, तुम छोड़ते हो दुनिया में जाने के लिए, सन्यासियों को कोई कैंसिटेशन नहीं है। बस लोग उनकी बहुत खासकर तबज्जा करते हैं, मान देते हैं, परंतु वह कोई मंदिरों में पूजित लायक नहीं बनते। और तुम तो मंदिरों में पूजने लायक बनते हो। मंदिर में पूजने लायक होते हैं देवताएं, क्योंकि उन्हीं की आत्मा शरीर दोनों पवित्र होते हैं। मंदिर में उनकी पूजा क्यों होती है? क्योंकि आत्मा भी पवित्र बन जाती है और शरीर है वो भी पवित्र बन जाता है, और जिस वायुमंडल में जिस स्थान में रहते हैं वो भी पवित्र बन जाता है। इसलिए मंदिर में मूर्ति स्थापन करके फिर उनकी पूजा होती है, और साधु सन्यासियों के मंदिर नहीं बनाए जाते। यहाँ हमको पवित्र शरीर नहीं मिल सकता, ये तो तमो का दान पवित्र शरीर क्यों नहीं मिल सकता? यहाँ पावन शरीर इसलिए नहीं मिल सकता कि दुनिया में जो भी पांच तत्व हैं वो सब पवित्र। जब पांच तत्व ही तमो प्रदान है तो शरीर भी किसके बनता है? पांच तत्व वहाँ आत्मा भी पवित्र रहती है तो पांच तत्व भी तमो प्रदान पवित्र रहते हैं। अभी आत्मा भी तमो प्रदान है तो तत्व भी तमो प्रदान, इसलिए बाढ़ तूफान आदि कितने हो चुके हैं। मनुष्य का स्वभाव संस्कार, मनुष्य की अपनी प्रकृति जब तामसी बनती है तो जड़ प्रकृति भी तामसी बन जाती है, बाढ़ तूफान आदि आते रहते हैं। अभी आगे चल करके और आएंगे या कम होंगे? और ज्यादा आएंगे। इसका मतलब अभी मनुष्य और तमो प्रधान बन गए। इसको दुख देना ये तमो प्रधान, तत्व में तत्व भी किसी को दुख नहीं देते। इस समय मनुष्य की बुद्धि भी तमो प्रधान है, तत्व रजो तमो भी जरूर आना है। वो तो पुरानी दुनिया कैसे हो जो फिर नई बनाने वाला आ गए। अब बात कहते हैं बच्चों सावन बन, ये अंतिम जन्म रावण की जंजीरों से अपने को बचाओ, आखिरी मत पर आधा तक तुम पतित रहे। ये बहुत बुरी आदत है, सबसे बड़ा दुश्मन है काम। छोटे पन में भी विचार में चले जाते हैं क्योंकि सब मुझे ऐसा मिल जाता है, पन ही ऐसा होता है। पतित जरूर बनना है, कन्या धर्म का भी पाल सिंह पति को जल मरने से कुछ बचा लेते हैं। अब ड्रामा को भी तुम बच्चे जान गए, बन कहते हैं क्रिश्चियन धर्म को इतने वर्ष हुए परंतु ये नहीं जानते कि क्रिश्चियन धर्म फिर कब खत्म होगा। कहते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष है, तो क्रिश्चियन आदि सभी धर्म 40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे। अब 5,000 वर्ष में ही जगह पूरी नहीं हो रही है तो 40,000 वर्ष में पता नहीं क्या हो जाएगा। शास्त्रों ने बहुत गपोले लगाए थे, इस कारण कोई जिला ही इन बातों को समझ करके कदम कदम पर कीमत पर चलते हैं। कीमत पर चलना कितना डिफिकल्ट है। लक्ष्मी नारायण जिनों को सारी दुनिया पूजती है वो अब चुप बन रहे। क्या कहा? लक्ष्मी नारायण को सारी दुनिया पूजती है, साधु संत महात्मा भी मानते हैं। साधु संत जब एक दूसरे से मिलते हैं या कोई भी इनसे मिलता है राम व्यवहार कैसे करते हैं? ओम नमो नारायण, उसको नमन करेंगे, नारायण को वो भी नमन करेंगे, क्योंकि जानते हैं ये हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है। हम तो घरदार छोड़ करके पवित्र बनते हैं और ये साथ में रहकर के पवित्र हैं। तो ये तुम ही जानते हो नंबर बार को साथ। अब बात कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो, घर तो जल्दी याद आ जाता है। क्या कहा? ब्रह्मा का तन वो भी घर है, मधुबन वो भी तप का आदि अब्बा का घर है, और परमधाम वो भी बाप का घर है। परमधाम कहो, ब्रह्मलोक कहो, ब्रह्मा का स्थान कहो, ब्रह्मालोक कहो, वो जल्दी याद आ जाता है। मनुष्य 8-10 वर्ष की मुसाफरी करके घर लौटते हैं तो कितनी खुशी होती है। क्या अब हम अपने 10 प्लेट में जा रहे हैं? अब वो मुसाफरी होती है थोड़े समय की, इसलिए घर को भूलते हैं। यहाँ तो 5,000 वर्ष हो गए, इसलिए घर को तो बिल्कुल भी भूल गए। अब बात आकर के बतलाते हैं कि बच्चे ये पुरानी दुनिया है, इनको तो आग लगनी, कोई भी नहीं बचेगा, सबको मरना है। इसलिए इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर को प्यार मत रखो। शरीर बदलते 5000 वर्ष हो गए, 84 बार शरीर चेंज करते आए हो। अब बात कहते हैं तुम्हारी 84 जन्म पूरे हुए, अब तो मैं आया हुआ, तुम्हारा पार्ट पूरा हुआ तो सब का पूरा हुआ। इस नारी को धारण करना है, सारी नारी बुद्धि में है, बाप द्वारा नारी सुन बनने के फिर सारी विश्व के मालिक बन जाते हैं। क्या कहा? सारे विश्व के मालिक कब बनते हैं? जब बाप द्वारा नारी धारण करें, स्वयं बाप डायरेक्ट हमको पढ़ाई पढ़ाई तो हमें सारे विश्व के मालिक बनते और विश्व में विश्व भी नहीं बन जाते। बच्ची मार के जो भी कक्षांड की वस्तु है तो कोई एक भी प्रभु कहने वाला नहीं रहेगा। हाँ राम हे प्रभु, ये अक्षर दुख में ही निकलते हैं, पतंग में नहीं निकलेंगे, क्योंकि वहां दुख की बात ही नहीं। तो ऐसा बात जिसको याद किया जाता है उनके मत पर क्यों नहीं चलना चाहिए? सूर्य मत से सदा सुखी बन जाएंगे। ये समझते भी स्त्री मत करना चले तो उनको मामूल से कहा जाता है। क्या समझते, क्या समझते हुए स्त्री मत करने चले कि हमको ईश्वर समझ रहा है? ये समझने ये अंजाम करने के बाद भी अगर स्त्री मत पर नहीं चले तो उनको क्या कहा जाएगा? मामूल। ईश्वरीय मत और आखिरी मत में रात दिन का फर्क होता है। अब जब करना है किस तरफ जाए, माया की तरफ तो दुखी दुख है, ईश्वर की तरफ एक जन्म का सुख है। अब किसी मत पर चलो, बात कहते हैं श्रीमत पर चलना चाहो तो चलो। पहली बात है काम पर जीत रहे, उनके भी पहली बात है कि मुझे याद करो। क्या कहा? काम पर जीत पहनना पहली बात है या मुझे याद करना पहली बात है? अगर काम पर जीत पहनना पहली बात होती तो बाप की याद की कोई महत्व रह ही नहीं जाता। तो बाप की याद का महत्व पहले, बाप की याद से ही हम पवित्र बनेंगे। ठीक है, ये पुराना शरीर तो छोड़ना ही है, अब वापस जाना है। इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खल छोड़ता हूँ और सचिव में समझते हैं ये बुरा शरीर छोड़ के बचपन में आएंगे, ये तो पुरानी दुनिया का विनाश होना है। ये बातें बाप बैठे सन्मुख समझाते हैं, ये सब ध्यान में रहे तो और सौभाग्य। कितना सहज है फिर भी पता नहीं कि हम ठीक राजधानी को क्यों भूल जाते, याद क्यों नहीं करते? संग रोट में आकर के गंदे बनते रहते। बाबा कहते हैं बच्चे गंदे विकल्प बहुत आएंगे परंतु कर्म भी उसे कोई काम नहीं करना है। ऐसे नहीं विकर्म करके फिर लिखो बाबा हमसे ये विकर्म हो गया कृपा करो और फिर विकर्म कर दो, उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाए। इसका विकर्म किया और बापों को बता दिया ये हमने किया और फिर जब विकर्म किया तो 100 गुना दंड कर जाएगा। इसको तत्व बताएंगे बताने की जरूरत क्या है जो 100 गुना दंड पड़ जाए? एक तो न बतलाने से दंड पड़ता है और बतलाने से आधा कम हो जाएगा। आधा कम तो हो जाएगा, आधा लोग बल्कि खिलाफ कर दो, अगर फिर भी दोबारा किया तो 100 गुना। तो आधा कम करने में फायदा हुआ या 100 गुना बढ़ाई हुआ उसमें फायदा हुआ? आधा कम करने में फायदा हुआ और 100 गुना जो बढ़ाई लिया तो बतलाकर फिर अगर गिरा तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता है। क्या कहा? इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता है। अजामिल बकरी, बकरी क्या करती है? मैं किया, मैंने किया, मैं स्वर्ग स्थापन करूंगी।
میں اسے خدا میں شانتی دھام بنانے والی ہوں. اور ہے کون؟ ہے پرم پتا پرماتما. تو وہ ایسی بکری سے جا کر کے مل جاتے ہیں اور پرماتما باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ادامل. جو ایشور کی گود لے کر کے پھر وکار میں جاتے ہیں تو خود ہوتا ہے کہ یہ بڑا ادامل پاپ آتما ہے جو وکار بغیر رہ نہیں سکتا. سب سے بری گندی جگہ ہے بائک کو. کیا کہا؟ کون سا کوچ؟ سنیما ہال. یہاں گندے سے گندے لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہوتا ہے اور ویبریشن وایو منڈل کیسا بن جاتا ہے؟ بہت ہی گندا. کتنی بھی مضبوط آتما وہاں پہنچے گی تو اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ آتا ہے پڑے گا. کوئی بھی وکار سے دور بھاگنا چاہیے. برہمن ہے نروکاری تو سنگ بھی برہمنوں کا چاہیے. شوتروں کے سنگ میں دکھی ہوتی ہے. شریر مل رہا ہے تو سب کچھ کرنا ہی ہے پرنتو کرنے کے لیے تو کوئی ذکر نہیں کرنا چاہیے. ہاں بچوں کو سدھارنے کے لیے سمجھانا ہے. سمجھانے سے نہیں مانتے تو رسی سے باندھنا ہے. کھانا نہیں دینا ہے. ایسے سدھر سکتے ہیں. رتیاں رتی ہے تو ریسپانسبلٹی بھی ہے. کس بات کی؟ ان کو سدھارنے کی. انہوں کو بھی سچی کمائی کرانی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی تھوڑا بہت سکھلانا اچھا ہے. جو بابا کو یاد کرنے سے مدد ملے گی. سچی دل پر صاحب راضی ہوتا ہے. اب ساری دنیا میں کوئی کس کا سہارا نہیں ہے. کیا؟ ہاں اب ایسا ٹائم بالکل نزدیک آنے والا ہے. قیامت کے سمے میں کوئی کس کا سہارا نہیں رہے گا. کوئی کتنا بھی نزدیکی سمبندھ ہو کوئی کسی کا سہارا نہیں بن کر کے رہ سکے گا. سہارا ہوتا ہے سکھ میں لے جانے کا. ایک پرماتما کو ہی یاد کرتے ہیں وہ کیا کر کے سبھی کو شانتی اور سکھ دیتے ہیں. سب میں سب سکھی ہیں. باقی سب آتمائیں شانتی دیش میں رہتی ہیں. بھارت سورگ تھا تب بھی سکھ مالک تھی. اشانتی مارا ماری کچھ بھی نہیں تھی. ضرور وہ نئی دنیا بابا نے ہی رہتی ہوگی. باپ سے برسہ ملا ہوگا. کیسے؟ وہ کوئی نہیں سمجھتے. اس کو رام راجی کہا جاتا ہے. اس کو جو باپ سے ورثہ ملا اس کو رام راجی کہا جاتا ہے. تو کس کو ورثہ ملا؟ رام راجی کا ورثہ. راون کے راجی کا ورثہ خلاص. اور ورثہ کس کا ملتا ہے؟ رام راجی کا. اب وہ رام راجی نہیں ہے. ہاں تو صحیح نا. دل بھارت جو پوجی تھا وہ پجاری بنے. پھر پوجی ضرور بنے گا. ابھی تم پورا کر رہے ہو. سو بھگوان واس شری کرشن کی آتما انتم جنم میں سن رہی ہے. کیا بات؟ انتم جنم میں سن رہی ہے کہ سنا رہی ہے؟ سن رہی ہے. سنا نہیں رہی ہے. ملیا شادی کے سمے میں کون سناتا ہے؟ جس سمے بابا نے بولا اس سمے کسی کی آتما سن رہی ہے. اب سنانے والی ہو گئی. اب اس کی بیٹی نہیں ہے. کرتی ہے کیا؟ کرتی ہے جان. کرشن کی آتما دیو آتما ہے. دیو آتما دھارنا کے ٹائم سنائے گی. جان نہیں سنا سکتی. جان میں ابھی بھی ادھوری ہے تو پڑھائی کرنی پڑے. پھر وہ پرشن بننے والی ہے. سویرے اس پر بابا کو یاد کرنا ہے. وہ ٹائم بہت اچھا ہے. وائبریشن بھی شدھ رہتا ہے. جیسے آتما رات کو تھک جاتی ہے تو کہتی ہے میں ڈیٹیچ ہو جاتی ہوں. تمہارا بھی یہاں ہوتے ہوئے بدھیوں کو وہاں لگا رہے. کہاں ہوتے ہوئے وہاں لگا رہے. یہاں ہوتے ہوئے کا مطلب کیا ہوا؟ اور وہاں میں نے کہاں
अमृत बोले उठ करके याद करने से दिल में भी याद आ जाएगी। ये कमाई है, जितना याद करेंगे उतना विकर्मा जी तो बनेंगे, धारणा होगी। जो पवित्र बनते हैं, याद करते हैं, वो समझ कर सकेंगे। क्या था अगर आप अवित्रता भी नदी चलते रहते हैं तो उनकी सर्विस नहीं हो सकती, सर्विस का रिजल्ट नहीं, प्रूफ नहीं आ सकता बाबा के पास। और याद में नहीं रहते हैं तो भी सर्विस नहीं कर सकेंगे। डायरेक्शन पर चलते हैं तो बाबा राजी होता है। पहले सर्विस करनी है, किसको रास्ता बताना है, योग का रास्ता बताने के लिए भी ज्ञान देंगे ना। योग में रहने से विकर्म विनाश होंगे, ज्ञान में रहने से, ज्ञान सुनाने से, सुनने से तो विकर्म विनाश नहीं होते हैं। याद में रहने के साथ साथ चक्र को भी खिलाना है, रूप और वचन का बनना है। रूप किसी का रहता है, रूप माने जो बात की याद में रहते हैं उनका चेहरा खिला हुआ रहता है, शक्ति और नशा दिखाई देता है तो वो हुआ रूप। और बसंत, बसंत ऋतु में क्या होती, खुशबू ही खुशबू चारों तरफ होती, तो ज्ञान रत्नों की और बुद्ध गुणों की जहाँ से खुशबू निकलती हो वो हुए बसंत। रूप बसंत की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध बताई, एक है रूप और दूसरा है बसंत, तो कौन हुआ